ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਾ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਕੁਰ ਭਲੂ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਾ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਕੁਰ ਭਲੂ ਹਮਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਜਾ ਕੋ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਕਰ ਗਹਿ ਕਾਡ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ, ਦੇਖ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਬਾਹੁੜ ਨਾ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਾਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ, ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਬਾਹੁੜ ਨਾ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਾਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ, ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
सतनाम। धन्यवाहे गुरु साहिब जियो, धन्यवाहे गुरु साहिब जियो। दो कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब तुठे पावा, सास सास नानक आराधे, आठ पहर गुण गाया, ना हाँ जति सती नहीं पड़ोआ, मूर्ख मुगदा जन्म पया, परणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू ना ही विसरिया, डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दे अमृत शब्द दी विचार सरवण करन वास्ते इकत्र होए सत संगी जनों, अज जिस अमृत शब्द नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने श्री हरिमंदर साहिब जी विखे अमृत वेले हुक्म रूप विच बख्शिश कीता है, ए अमृत बोल शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्होंने अपनी मुबारक रचना तो उच्चारण किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का राग टोडी है, जिस विच हजूर ने यह शब्द उच्चारण किया है। अज दे आए हुए इस पवित्र हुक्म रूप शब्द की विचार इस अमृत शब्द दिया पहलियां दो तुकां ही रहाओ दियां तुकां ने, सतगुरु ने पहली बख्शिश तो यह की कि हे भाई असा सत संगत विच साध संगत विच उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम नूं चितारुआ चेते किया याद किया साध संगत विच जपे हुए नाम की बरकत नाल साडे अंदर सहज और आनंद की अवस्था प्राप्त हो गई ते पूर्वले किते हुए कर्मां दा चंगे कर्मां दा कोई अंगूर कोई अंकुर फुट आवा जिस करके सत संगत ते नाम की बख्शिश हो गई। दूसरा वचन वड्डे भागां दे नाल पूरे सतगुरु जी की भेट मिलाप होया समर्थ सतगुरु जिसका कोई पारावार नहीं उन्हें सानू वासना दे इस भरे हुए संसार सागर विच हाथ दे के बचा लिया। सतगुरु ने इन्नी कु कृपा कर दिती हुण जन्म मरण का कोई संकट नहीं ना सानू किसी होर दे दर ते भटकना पैना है ते ऐसे पार ब्रह्म सतगुरु नू असी मुड़ मुड़ नमस्कार करने हां जिस पार ब्रह्म परमेश्वर ने यह साडे ते बख्शिश कीती। आओ इस अमृत बचन नू धन गुरु रामदास महाराज जी के चरणों च अरदास करके विचारना प्रारंभ करिए। सतगुरु सोधी सुल्तान पातशाह जी तरस करो साडे ते अंदर दी निम्रता एकाग्रता और शब्द प्रति पूर्ण भरोसा अकीदत की दात बख्श दे होए आप विच वर्त के विचार करा लवो। साध संगत लवाओ गुरु रामदास के चरणों च हाजरी प्यार अदब नाम उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी टोडी महला पंजवा।
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 31 रागों विच एक राग है टोडी। टोडी राग दे अंदर सतगुरु गुरु पंचम गुरुदेव जी ने अपनी अमृत रसना तो इस रब्बी कलाम नू इस रब्बी बचन नू तुरकी बाणी नू उच्चारण किया है।
साधु संग हर हर नाम चितारा।
सतगुरु गुरु पंचम पातशाह जी पहली बख्शिश ये कर रहे ने कि साध संगत विच मिल के हर हर नाम चितारा क्योंकि भावें कुछ टीकाकारा ने इहदे अर्थ इत्थों शुरू कीते ने हे भाई जिहड़ा मनुख पर देखो इस अमृत शब्द दीआं तुकां विच अगे आउणा है कि अंकुर पल हमारा साडा इहदा मतलब अपने आप नूं उत्तम पुरख च। महाराज कह रहे ने कि असी साध संगत विच उस खरी परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नूं पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम नूं चितारा दा अर्थ चेते कीता है याद कीता है साध संग हर हर नाम चितारा संगत विच पहुंच के खरी प्रभु दे नाम दा चिंतन कीता है।
सहज आनंद हुए दिन राती
हुण इस संगत विच जपो को नाम दा फल की है, इस विचो दात की मिली ते सच्चे पातशाह महाराज कृपा कर रहे ने। कह लगे सहज आनंद होवे दिन राती सत संगत विच बैठ के पार ब्रह्म परमेश्वर दा नाम चितारन नाल दो बख्शिशां मिल गईयां अंदर दियां। एक तां सहज मिलिया ते दूसरा शब्द गुरदेव ने वरत्या कह आनंद। एक सहज ते दूसरा आनंद, इहदी प्राप्ति सत संगत विच प्रभु नूं चेते करके होई है।
अंकुर पलो हमारा,
अंकुर पलो हमारा, अंकुर दा अर्थ आपां समझने खां कि जदों बीज पौधे दा रूप धारण करदा है ते बीज दे विच्चों अंगूर, असी आम शब्द वरतने अंकुर, अंगूर शब्द भी वरत्या जांदा है, अंकुर निकलदा है। हजूर किन्ने पूर्वले कीते हो कर्मां दी तो फैलश, अज साडा अंकुर भला हो गया ते होया कि क्योंकि सहज ते आनंद की प्राप्ति हुई ते सहज आनंद की प्राप्ति का कारण साध संगत विच बैठ के खरी परमात्मा दे नाम नूं चितारना। असी इस रहाओ दियां तुकां नूं ही थोड़ा जिहा विस्तार सहित विचारन दा यतन करिए। पहला शब्द सतगुरु ने वरत्या है साध संग, असी सत संगत शब्द, संत संगत शब्द, गुरु संगत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विचों पढ़ देखा। एक गल हर इंसान जिंदगी चेते रखे कि साडे आचरण की उसारी मनुख की शख्सियत, मनुख के प्रैक्टिकल जीवन विच सब तो ज़्यादा जिहो जी वह संगत करदा उहदा असर हुंदा है। जिहो जी सोबत करेगा वैसा आचरण बनेगा, उहो जिहा उहदे अंदर गुण होणगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिथे सिमरन ते भगती ते भरोसे ते प्रभु ते यकीन ते सिदक ते गुरु ते भरोसा शब्द की गल की, उत्थे आप बाणी पढ़न वाले अच्छी तरह जानते हो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च सत संगत ते बहुत ज़्यादा जोर दिता गया है। सत संगत, साध संगत, संत संगत, गुरु संगत, वार वार हजूर ने इस शब्द उत्ते जोर दिता है। इसका कारण की? इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि असी मनुखी समाज विच रहने वाले हाँ, समाजिक प्राणी हाँ, ते कुदरती तौर पर जिहड़ा साडा मन है समाज विच विचरदिया होया, जिहो जी सभा सोसाइटी विच असी रोज़ विचरांगे कुछ ना कुछ उहदे गुण जां अवगुण साडे उपर जरूर असर कर जांदे ने। शायद कई वारी साडे पंजाबी दे शब्दां नूं जदों असी बोलने हाँ तो आम साढ़े घर एक कहावत कह लो जां एक लफ्ज़ वरत्या जाता है कि गवांड का रूप नहीं आता मत आ जाती है। हुण आ शब्द भावें बजुर्ग सादा जिहा वरत दे कि गवांड का रूप नहीं आता मत आ जाती, क्यों? क्योंकि जिहो जिहा गवांडी है सच एवे उहो जी बंदे की अपनी सोचनी समझ ते अकल हो जाएगी। असी समाज विच विचरने हैं, जिस जगह तो विचरने हैं उस दे चुगिरदे दे लोग साडे जीवन ते साडे विचारां ते साडे मन ते साडे अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव छापदे। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चों मैं कुछ बेनतियां करनियां। हजूर ने एक बचन किया है, कहिंदे एक गल याद रखो, एक पंछी उड़दा है ते उड़ के वह बाग भी जांदा है ते बाग विच सारे पेड़े एक जैसे तां नहीं, उस बाग विच अंबां दा पेड़ा भी है, अंबां दे पेड़े भी ने, उस बाग विच अमरूद दे पेड़े भी ने, उस बाग विच अनार भी ने संतरे भी ने पर एक बाग विच वक वक पेड़े ने ते पंछी जिस भी पेड़े उपर जाके बैठेगा उसे बाग ही सवाद ओदी चुंज नू ओदी जेबा नू ओदे शरीर नू आएगा। जे संतरे दे रुख ते बैठदा है ते चुंज नाल ओनू तोड़ के खाण दा यतन करदा है ओ खटास जां मिठास पंछी नू जरूर आएगी। जे अनार दे पेड़े ते बैठदा है ते उसनू चुंज मारेगा ते ओदे दाने दा स्वाद जरूर आएगा। जे अमरूद दे रुख ते बैठदा है ते ओदा स्वाद जरूर आएगा। मैं संखेप जी बेनती करा कि पंछी उड़ जावे बाग विच पहुंच जाए जिहो जिहा ब्रिक्ष ते बैठेगा ओहो जिहा फल खाएगा ते जैसा फल पंछी खाएगा ओहो जिहा ओनू स्वाद आएगा। सच इह साडा मन एक पंछी दी तरह है यह गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन ने। यह साडा मन खिन खिन उड़दा भी है। पंछी तां शायद किते दो घड़ियां आलणी विच टिक जांदा है पर बंदे दे मन दी अवस्था ऐसी प्यारो यह दो घड़ियां भी किते टिका विच नहीं आउंदा। साडा मन जिहो जी सोसाइटी च जांदा है तुसीं देखो जिहा असर कबूलदा है। असी मन लो हुण गुरुद्वारा साहिब बैठे हैं मंजी साहिब दीवान खाल च बैठे हैं हरिमंदर साहिब जाने हैं जां संगत दे लंगर दी सेवा भी जाने हैं तुसीं जिहो जिहे आप जी दे नज़दीक होणगे उन्हां दे तन विच्चों उन्हां दी बिरती दियां उठदियां हुईयां तरंगां वाइब्रेशनस उह साडे उपर जरूर असर करनियां वेव्स। जिहो जी सोसाइटी चलदे होवे मैं इत्थों तक बेनती करां कई वारी जिन्हां बंदियां नाल चलदे होईए उह जबान तो बोल के ना ही सांझ करन उन्हां दी चुप विच्चों भी उन्हां दी बॉडी दी तरंग साडी बॉडी नूं प्रभावित कर जांदी है असर कर जांदी है। हुण आपां जे गुरु साहिब दे चरणां च बैठ के कीर्तन सुणने ते मन रस विच पूरत है बाणी सुन रहे हैं इह मन परिक्रमा तो निकल के थोड़ा जिहा बाहर गया ते इहदे अंदर बाहरों कुछ लोग ऐसे मिल गए जिन्हां नाल बोल चाल के इहदे अंदर दा खिंडा बन गया। थोड़ा जिहा निकल के चुरस्ते विच गया उह खिंडा होर ज़्यादा हो गया ते जदों बाज़ार विच गया चेते रखियो उह अवस्था नहीं रही जिहड़ी हरिमंदर साहिब विच बैठ के कीर्तन वाली सी। दिन भी इक होवे शरीर भी इक होवे ते मन भी इक होवे क्योंकि जिहड़ियां जिहड़ियां थावां तों साडा शरीर लंघी जाएगा जिथों जिथे साडे मानसिक फुरने निकली जाणगे उत्थों उत्थों दा असर सच एवे साडे मन उत्ते हो जाएगा। दास कई वारी बेनती करदा है असी चिट्टे कपड़े लै के घरों चलीए क्योंकि अज दा प्रकरण साध संगत तुसीं शुरू कीता है कि सत संगत विच बैठ के खरी दे नाम नूं चितारिया कपड़े पा के जाने हैं ते जे किते रेतली जमीन चो निकलोगे ते रेत दे कण साडे कपड़िया उत्ते जरूर लगनगे सुख समझे कण। जे किते इट्टां दा भट्ठा सामने आ गया ते उत्थों भी निक्के निक्के कण उठणगे पर वह लाल रंग दे कण साडे कपड़े उत्ते जरूर पैणगे। जे मन लो अगे किते भट्ठी तपी होए कोई चीज़ अग लाई है ते उत्थों लंघोगे ते सच एवे साडे तन दे उपर उहदे विच्चों जरूर निक्के निक्के कालक दे जिहड़े टुकड़े ने कलत्तन दे उह साडे तन दे कपड़े उत्ते जरूर पैणगे। मन लो अगे आपां जाने पए आ ते इहो जिहा फुल्लां दा इक बगीचा है जिहदे विच फुल खिड़े ने ते उहदे कोलों लंघियां भी महक असर करी जांदी है। आप देखोगे कि जे किते लंघदिया होया जिस कपड़े ते लाल रंग दे कण पए ने रेत दे कण पए ने कालक दे कण पए ने किते थोड़ी जी किते कोई सेंट अतर उहनू छिड़क देवे आप हैरान होवोगे उसे कपड़े विचों स्मैल आउण लग पएगी सुगंधी आएगी। मैं अर्ज करांगा इह तां बाहर दा कपड़ा है जिथों सवेर तो शाम तक लंघने ਉਹ ਕੁਛ ਕਣ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ इस गल नूं सच मन्नियो कि शाम तक उन्हां बंदियां दे ख्याल, उन्हां दे फुरने, उन्हां दे विचार साडे अंदर दे कपड़े नूं जरूर प्रभावित करनगे, क्योंकि ये मनुखी सुभा है। मैं बेनती कर लगा, मन एक पंछी की तरह है, ये दसे पासे उड़द है। पंछी जिस रुख ते बैठे वह फल का स्वाद चखद है, तो बंदा जिओ जी सुसायटी विच बैठे वो दे गुण जा औगुण अपने विच धारण कर लैंदा। महाराज जी ने अमृत बाणी च सलोक किया कि कबीर मन पंखी बहो उड़ उड़ दै दिश जाए। ये मन उड़दा पंछी दी तरह, कबीर मन पंखी बहो उड़ उड़ दै दिश जाए। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए, जिहो जी संगत साडे मन ने कीती इहनूं फल ओ ही मिलना है। आओ थोड़ा जिहा असीं गुरबाणी च होर देखी। दास अर्ज करे कि सत संगत एक बहुत ही गहरी, मैं कह सकना विशा है गहरा, जिन्हों असी आम नॉर्मली जा बनाया होया सादा जा वर्तने शब्द। सत संगत असी हर इकट्ठ नूं कही जाने, पर मैं पहला आप जी दे सन्मुख बेनती करनी है। कल्ला इंसान ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब ने तीन गल्लां दा जिक्र कीता है। वह कहने जिहड़ा पानी है ना, यह भी संगत का असर कबूलता है, पानी उपर भी संगत का असर हुंदा है। दूसरी गल जिहड़े आ रुख ने बनासपति, यह भी संगत का असर। मैं सत संगत नहीं शब्द इत्थे वरत रहे, सिर्फ अजे संगत वरत रहे हां। पानी भी संगत का असर कबूलता है, आ लगे कोई ब्रिक्ष पेडे भी संगत का असर कबूलते हैं। इतों तक कि जिन्हों आप मैटर धात कहने, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना मुताबक मैटर धात भी संगत का असर कबूलती है। इतों तक कि पंछी भी संगत का असर कबूल जाते हैं, पशु भी संगत का असर कबूलते हैं। आओ थोड़ा जिहा नूं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो दर्शन आप करिए। असी पेडे देखने बाहर उगे ने, बनासपति है। गुरु ग्रंथ साहिब ने दो पेडिया का जिक्र बड़ी बड़ी किया है। उंज तो जो वातावरण गुरु ग्रंथ साहिब चो पढ़ो तो बड़े रुखां का जिक्र महाराज करते हैं, अंब का करते हैं, छिछरे का, अरिंद का करते हैं, केले का करते हैं, बेरी का करते हैं, चंदन का करते हैं, सच्चे पातशाह सिंबल का जिक्र करते हैं, अनेक रुखां का जिक्र महाराज करते हैं। पर दो रुखां नूं बड़ी बड़ी दोहराओ विच लिआंदा। असी देखने हैं एक चंदन ते दूसरा बांस। चंदन दे ब्रिक्ष नूं परमात्मा ने सुगंधी दित्ती, उहनूं महक दित्ती, ते भाई साहब गुरदास साहब लिखदे ने कि चंदन विच्चों जदों महक दीआं लपटां निकलदीआं ने जां महक निकलदी, उह हवा संयुक्त हो जांदी, हवा विच मिल जांदी, ते जिन्हां जिन्हां राहां ते वह सुगंधी नाल भरी हुई हवा निकलती है, उन्हां राहां विच जिन्ने को रुख हुंदे ने तकरीबन चंदन की सुगंधी हर उस रुख नूं अपने नाल जरूर प्रभावित करती है। हुण चंदन का ब्रिक्ष एक है, उहदे नेड़े कंडियां वालियां झाड़ियां भी उगियां, उस दे नेड़े ढक पलाह भी पैदा होया, उहदे नेड़े छिछरे का अरिंड का रुख भी पैदा होया, उहदे नेड़े मान लो टानी ते किकर सूला वाला रुख पैदा होया। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने बंदिया तू चेते रख, तेरे सारे अंदर दी तबाही दा कारण तेरी सोसाइटी है। जे चंगी संगत करेगा तो अंदर बच जाएगा, जे माड़ी संगत भी जाएगा तो प्यारिया जिन्ना मर्जी तेनू समझा लीए तेरे ते असर नहीं होना। मैं सिर्फ इस प्रकरण नूं आप नाल सांझा करना चाहना। हुण चंदन दे ब्रिक्ष अपनी सुगंधी दूजे रुख नूं दे रहा है, वह अपना गुण दूजे विच प्रवेश करा रहे। तो गुरु साहब ने बाणी च बचन किया, कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड्यो ढाक पलाश, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। एक ब्रिक्ष की उदाहरण है, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। जेड़ा ब्रिक्ष दे कोल चंदन कोल दूजा रुख पैदा होया, उहदे विच भी सुगंधी आ गई। इसे प्रकरण नूं फिर भगतां ने, गुरु साहिबाना ने परमात्मा लई शब्द चंदन वरत्या, गुरु लई शब्द चंदन वरत्या, सत संगत लई शब्द चंदन वरत्या, अपने वास्ते ढक पला ते अरिंड दा रुख वरत्या। ते इहदा मतलब इन्ना सी कि जिवें एक आम नीवा रुख चंदन दी संगत करे ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਇਹਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਚੰਦਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਹਰਾ ਹਮ ਅਰਿੰਦ ਬਾਪੜੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਰਿੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਅਰਿੰਦ ਬਾਪੜੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸ ਆ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਦਬੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਰ ਪਿਆਰੂ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਬਾਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਸੜਨੀ ਸੜਨਾ, ਨੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਨੇੜੇ ਸੁਗੰਧੀ, ਬਾਂਸ ਨੇੜੇ ਕੋਲੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਤਰਸ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੱਭਣੀ ਪਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਖੱਬਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਣਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਕਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਡਬੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਅਤਰ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇੰਨੇ ਉਲਾਰੂ ਪੰਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਜਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ 22 ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਡੋਬੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਦਬੋ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਗੇ, ਉਸ ਗੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਭਿੱਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਤ ਫਕੜ ਕੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਗੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਬਖੇਰਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਗੰਧ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕੂੜੇ ਦਾ ਵੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਖੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੁੱਢਿਆ, ਇਉਂ ਮਤ ਡੁੱਬੋ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਨਸਪਤੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਰ ਪੰਛੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਟਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੀਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇੜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਦੋਂ ਝੂਲਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਮਲ ਪੱਤੇ ਚੀਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰੀ ਮਰੂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲਾ ਉਹ ਚੀਰੀਆ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਝੂਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇੜੀ ਕੁਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਗਿਆ ਮਿੱਠੇ ਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਤੇ ਸੱਕ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੇ ਗੁੜ ਤੇ ਸੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਖ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੁੜ ਸੱਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਲੋਕ ਬਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਲਾਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਆ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉੱਡਦੇ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੋਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਤੋਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਬਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੋਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਭਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੋਤਾ पंछी होने के बावजूद भी बंदे वर्गे शब्द अपने गले च बोलन लग पैंदा है, भावें उहदे शब्द बड़े सीमित जाए। वह जी आया नूं कहिंदा है, राम बोल कहिंदा है, वाहिगुरु बोल कहिंदा है। मैं ऐसे पंछी भी सुने कि जो कोल जाइए तो वह वाहिगुरु जी की फतेह शब्द भी वरत जाते, भावें शुद्ध उचारण बंदे वर्गा नहीं पर उस साउंड विच उस धुनी विच बंदे दे मानवी शब्द जेड़े ने मनुख दे शब्द ने उन्हां दी झलक पैंदी है। क्यों? क्योंकि एक पंछी बंदे दी संगत करदा है ते जिहो जिहे बंदे दे बोल ने उह जिहे पंछी नूं बोलणे आ गए। उस तो अगे मैं बेनती करां प्यारो, आ महफिल जिहड़ा है इह भी संगत दा असर कबूलदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच लोह दा जिक्र बड़ी वारी आया है ते दूजा पारस दा जिक्र बड़ी वारी आया है। भाई साहब ने जिस ते तांबे दा जिक्र पित्तल दा जिक्र बड़ी वारी कीता गुरदास साहब ने। हुण लोहा एक मैटल है, पित्तल एक मैटल है, तांबा एक मैटल है, पर जदों यही मैटल यही धात पारस दी संगत कर दी है ते सच एवे कि लोहा तब्दील हो के सोना बन जाता है, तांबा चेंज हो के सोना बन जाता है। गुरु ग्रंथ साहब उदाहरणा तां देंदे ने, बंदिया तेरे खाने विच किते गल पै जाए जे पंछी संगत नू चेंज हो रहा है, जे पानी संगत का असर कबूलद, जे बनास्पति संगत का असर कबूलदी, जे धात संगत का असर कबूलदी, सारी जिंदगी तेरी लांघी औगण कट्ठे कर दें तो किते रब दे प्यारियां दी सत संगत मिल जाए, तेरी जीवन पलट जाए ते तू परमात्मा वर्गे गुणा नू धारण कर ला। इहदा मतलब इन्ना है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च पहली बेनती मैं ये जरूर शब्द पढ़ देना वा जिस संबंधी मैं अर्ज की, कबीर साहब जी का शब्द है, यदियाँ राहो दियाँ तुकां ने कि बिगड़ो कबीरा राम दुहाई साच पवो अन कतै न जाई, कि कबीर बिगड़ गया है। तो बिगड़न का अर्थ मैं एक बार किया, बिगड़न का अर्थ आ नहीं करना जिहड़ा पंजाबी वाला है जिहड़ा औगुणा च प्रवृत्त हो जाए ये जी बिगड़ गया, इत्थे बिगड़ियो का अर्थ चेंज हो गया, तब्दील हो गया। कबीर साहब कहिंदे परमात्मा के नाम की दुहाई दे के मेरे अंदर तब्दीली आ गई, चेंज आ गई। की चेंज आई, किवें आई? कहन लगे भले मनुखो, जिवें गंदा पानी नदी में चले तो चंगे दरिया उत्थों ना गंगा की उदाहरण लई। इहदा मतलब उस समय वह बनारस के कंधे रेंदे सन, गंगा का पानी बड़ा निर्मल सी, पर हुण आपां सारे देखने हैं असी दरियावां नूं भी नहीं बख्शिया। सच्ची गल ए वे जदों आदम जात इन्नी नहीं सी उदों बीमारी भी इन्नी नहीं सी, पंछी उदों भी सन, पशु उदों भी सन, बनास्पति उदों भी सी। इस आदम जात ने जदों अपना पसारा पसारिया, कई बार सोचना वा किन्ना कु बंदा इहदा शरीर मलीन है कि जिथे ये बैठ जाता पानिया भी गंदिया कर देता है, ये बनास्पति भी गंदिया कर देता है, सच एवे धरती की निर्मलताई भी खत्म करके गंदगी में तब्दील कर देता। यह बंदे का बंदे की फितरत हो चुकी है तो अज अपनी मलीनता करके बीमारियां जूझता पे। खैर मेरा प्रकरण नहीं कि पर्यावरण जो नेचर ची देखने पे हैं वातावरण, सिर्फ मैं बेनती कराँगा वो कहने गंगा की संगत मैले पानी ने की पर वह निर्मल हो गया। कबीर साहब ने मुद्दता पहला किया पर उदो गंगा बिल्कुल निर्मल सी। हुण इहदा अर्थ यह नहीं कितने कर देना जी हुण तो गंगा मैली आ हो गई, हुण किवें ढुकेगा शब्द जी, हुण तां अजकल दे समें च ढुकदे ही नहीं पिया, क्योंकि साडे बंदे कई कमर कसाई करके बैठे हुंदे ने कि कहड़ी तुक लभे ते आपां निकलीए बाहर रौला पाईए। देखो जी अज दे परपेक च बाणी सैट नहीं बह रही, यह फिट नहीं हो रहा शब्द नहीं। इत्थे गंगा का भाव अर्थ लैना दरिया, जब निर्मल पानी का दरिया भर के वगे उहदे विच गंदा पानी मिले तो निर्मल पानी गंदे नू अपनी संगत नाल निर्मल कर देंदा। कबीर साहब कहिंदे गंगा कह संग सलता बिगड़ी, सलता पंजाबी च असीं पढ़ रहे हैं, सरिता मतलब नदी। गंगा कह संग सलता बिगड़ी सो सलता गंगा हो निबरी, वह गंगा का रूप हो गई संगत करके। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई साज पयो अन कतै न जाई, अगे वो वचन करदे ने प्यारो कि चंदन कह संग तरवर बिगड़ियो सो तरवर चंदन हो निबरियो,
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਾਰਸ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਵਿਗੜਿਓ ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਕੋਈ ਨਿਬਰਿਓ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਕੋਈ ਨਿਬਰਿਓ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲਗਾਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪੂਰਬ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੂ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਂ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਉਹ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਉੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਵਛੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਘੋੜੇ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਵਾਜਾ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸਾ ਇਕੱਠ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਪਕੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗੀਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ ਜਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹਜ਼ੂਮੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦਗੀ ਅਸਤ ਆ ਹਜ਼ੂਮੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦਗੀ ਅਸਤ ਹਜ਼ੂਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਬਹਿਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਅਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ आ हाजू में खुश के बहरे बंदगी अस्त अग्यो कहने आ हाजू में खुश के मैजे जिंदगी अस्त असल विच ओ ही अकट चंगा जिदे विचो आत्मक जिंदगी मिलती है ते प्यारो जिथों आत्मक जीवन की लोड़ नहीं मिलती उन्हें किवें कह देंगे सतसंगत के जिथे बंदगी है उथे जिंदगी है ते जिस इकट्ठ विच बंदगी नहीं उस इकट्ठ विच जिंदगी नहीं प्यारो गुरु घर का इकट्ठ बंदगी ते जिंदगी का सुमेल है। भाई साहब की रचना विचों आ हजूमे खुश के बहरे बंदगी अस्त आ हजूमे खुश के मैजे जिंदगी अस्त आ हजूमे खुश वो शब्द वरदे कह लगे आ ही इकट्ठ चंगा है बहरे याद उस्त ओ ही इकट्ठ चंगा जिदे विच रब की याद आती हो ते प्यारो जिथे रब की याद नहीं उस इकट्ठ नू की करांगे। गुरु रामदास जी दा जन सी बचन पढ़िया कहने तन तन सत संगत जित हर रस पाया। गुरु अर्जुन साहब कहने संगत का अर्थ यह नहीं आओ दो करियां बैठे कोरा पांजा लेके चले गए रुखे जे बन के। गुरु साहब कहने सत संगत ओवे जिथे सुकियां होया विच बंदगी का अंगुर पुंगर के बाहर आ जाए सत संगत ओवे जिथे फिक्कियां विच सवाद बन जाए सत संगत ओवे कि जिथे एक कीर्तन का शब्द सुने ओदियां अखां प्रेम नाल सेजल हो जाए। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया ते की कुछ मिलिया गुर प्रसाद परम पद पाया सोके का सखरिया। मैं बेनती इस तो अगली जड़ी कर लखा जदों किसी अंदर गुरु का शब्द वरतदा है। कल भी मैं एक जगह अर्ज करके आया गुरमुखो सच एवे धर्म के बाहर दे अस्थान ने गुरुद्वारा कह मंदिर कह मस्जिद कह चर्च कह पर सच एवे गुरुद्वारे विच गए कोई सिख ने एक दिन खुद गुरुद्वारा बनना है। यह शब्द मैं बाणी चो अर्ज करांगा इन शरा दे विच रहन वाले किते ना समझन गुरुद्वारे की बेदबी कर दिती। गुरुद्वारे तां जाने कि खुद गुरुद्वारा बन दी जाच आ जाए हर मंदिर विच तां जाने कि शरीर हरिमंदर की समझ पै जाए देव आलिया विच तां कोई जा रहा कि खुद देव रूप हो सके ताही तो सतगुरु ने बाणी विच शब्द वरते सन कह लगे हरिमंदर ओ शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए तू हरिमंदर च रोज आने एक अरदास कर जिमें इतने शब्द का अठे पैर प्रकाश चलता है। गुरु रामदास नूं मत्था टेक के कह दाता तेरे हरिमंदर ने शरीर हरिमंदर बनाए ने कृपा करे शब्द का प्रकाश मेरे जीवन में भी हो जाए बॉडी भी हरिमंदर बन सके। एक बार गुरु के चरण पेंदे असी उस धरती नूं पूजने हैं ते मेरे गुरु रामदास दी एक बचन है कहिंदे ने हे परमात्म देव ओ शरीर बहुत उत्तम है जे शरीर विच मेरे गुरु दे शब्द दा टिका हो जांदा ओ गुरुद्वारा बन जांदा बेनती है। ताही तां साडी समस्या है असी बार दी चार दुआरी दे गुरुद्वारे च पग्गां उतारने हैं जिन्नी देर तक अंदर दा गुरुद्वारा नहीं बनता चेते रखियो उन्नी देर तक बाहर दे गुरुद्वारे दी भी कबर नहीं पैंदी। समझ तां पर सतगुरु ने बाणी च किया धन धन सुहावा सो शरीर थान है उथे बॉडी का जिक्र किया जिथे मेरा गुर धरे विखा। भगत पीपा जी ने कहा उन्होंने किसी पूछया कि तुसी जी जाते नहीं तीर्थां ते कदी मंदरां च वो कहन लगे मैं जाना छड्ड दिता क्यों कहन लगे मेरा तन ही मंदिर बन गया हुण अंदर दे देवते दी परिक्रमा करना चेते रखियो देव प्रकाश प्रभु कायों देवा कायों देवल कायों जंगम जाती। फिर बेनती करांगा जिस सिख विच गुरु दे शब्द दा प्रकाश है जिस अंदर गुरु दे नाम दी रों चलदी है जिस अंदर गुरु दी कृपा वरदी है वो जिथे भी जाएगा सत संगत जरूर बनेगी। वो गड्डी च बैठा होगा उत्ते सत संग बन जाएगी वो कमरे च बैठा होगा उत्ते सत संगत बनेगी। बस इन्ना ही दुख जे दुनियादार बंदा धर्म अस्थान ते रह के भी बाजार विच ही तुरिया फिरदा है ते सत संगी पुरश बाजार विच बैठा होया भी गुरुद्वारे बैठा हुंदा है। फिर मैं शब्द दोहराण लगा कि दुनियादार बंदा गुरुद्वारे सत संगत इकट्ठ विच बैठा भी मैं इकट्ठ शब्द इत्थे वरते सत संगत इकट्ठ विच बैठा भी बाजार विच घूमदा है ते जिहदे अंदर शब्द की लो हो जाए सच इह बाजार विच घूमदा भी गुरुद्वारे विच बैठा हुंदा है। और मैं एक सिख की उदाहरण देन लगा बड़े प्रमाण ने कि सिखां दे जीवन ने लोगों के जीवन पलटे। हनेरा पै रहा है सूरज अस्त हो गया हनेरा पसरे एक छोटा जा रजवाड़ा है ते उस राजे दे महल बहुत सोने बने ने ते उस राजे दे ऊपर किसे दूसरे गनीम ने गनीम फारसी का शब्द वैरी ने किसे दुश्मन ने हमला करना है उन्हें चिंता लगी है जिन्हें हमला कर दिता मेरे बनेगा की एकादशी का दिन सी ते बादशाह ने वैगुरु उस राजे ने अपना हुक्म फरमान जारी कर दिता क्योंकि पांड्या ने उहदे बंदिया ने कहा जे अज सारी प्रजा वर्त रखे तो दुश्मन टल सकता है। उन्हें हुक्म कर दिता मेरे राज विच कोई बंदा ना ऐसा होवे जिन्हें एकादशी का वर्त ना रख्या होवे। राजे का हुक्म सब ने मनिया सब का धर्म ही यह सी पर उस दिन अज एक गुरु नानक साहब का सिख पहुंचे उहदे जहाज चलते ने उहदे अंदर शब्द की लोक है। उन्हें शाम नू जहाज किनारे लाया उस राजे दे रजवाड़े दे किनारे लगा वो उतरिया उन्हें शाम नू दोपहर ढली तो बाद गुरु नानक साहब दे शब्द पढ़े उन्हें चुल्हा तपाण दा हुक्म कीता नौकरां नू उत्थे कहा गया भी इत्थे हुक्म है राजे दा कि अज चुल्हा नहीं तपना एकादशी का वर्त है। उन्हें कहा नहीं मैं सिख हाँ मेरे गुरु ने कहा खाना पीना पवित्र है देतोन रिजक संभा है मैं जीव वास्ते नहीं खा रहा मैं जीन वास्ते खा रहा फिर बेनती सुनियो मैं खान वास्ते नहीं जी रहा मैं जीन वास्ते खा रहा वा तो मैं जी इस करके रहा वा कि मैं अपने गुरु नानक दे शब्द नू कमा सका। उन्हें लंगर लाया सब ने छकिया हुण साडा हाल जिहड़ा है मैं उदन भी कहा सी अन्न मत वाले रखण जी उन्हां दा धर्म है ते असी गुरु नानक दे सिख कहुंदे किहड़े पासे तुर पएगा। वर्त रखो सिखो प्रेम सुमारक ग्रंथ च लिखिआ कि खालसा वर्त रखे किहड़ा वर्त रखे अपनियां अखां दा वर्त रख। मैं अज सारा दिन गंदी नज़र नाल किसे नूं नहीं देखणा कन्नां दा वर्त रख मैं किसे दी निंदिया चुगली नहीं सुननी अपनी जबान दा वर्त रख मैं कूड़ा नहीं बोलना अपने पैरां दा वर्त रख मैं मंदे रस्ते ते नहीं चलना अपने मन दियां बिरतियां दा वर्त रख मैं गंदे फुरने नहीं उठन देने। आपां भेडा चाल किधर तुरे फिरने सिख मेरी इशारा तुसीं समझ गए हो। ओ सिख ने कहा मैं वर्त नहीं रखदा। लंगर तैयार होया छकिया बादशाह नूं राजे नूं दस दिता गया कि देखो जी फलाना बंदा उन्हें हुक्म अदूली कीती तुहाडी उन्हें कहा इहनूं चुक के काल कोठरी सट दिओ। वह कोई सिख होर नहीं सी लाहौर का वसनीक भाई मानसुख भाई भगीरथ की संगत ना चेंज होया गुरु नानक का अन्न सिख ते गुरु नानक दे शब्द लिखण वाला पहला सिख कलमबंद करन वाला बाणी उन्होंने कैद कर दिता गया। बड़ा अमीर उहदे जहाज चलते ने व्यापारी दे बादशाह नूं चिंता है मेरे ते हमला हो जाने वह चिंता तुर होया उन्हें नशियां दे दौर चला दिते नचन वालियां मृतंगणा आईयां साज बजाण वाले सजंदे आए क्योंकि भुलना चाहता मेरे उत्ते कोई हमला कर रहे नाच गान शुरू हो गया प्याले छलकन लगे अद्धी रात तक नचन गाउण वाले भी मदहोश होकर डिग पए पर चिंता तो राजे शिवनाब नूं नींद किथे मैं शिवनाब का जिक्र कर लगा उन्हूं नींद किथे अद्धी रात तो बाद उहदे कन्नां विच इक आवाज़ पई कैद कोठड़ियां महल दे नेड़े सन रात सारे लोग टिके सन उहदे कन्नां विच उच्ची सारी गुरु नानक दे शब्द दी आवाज़ पई बाणी दी आवाज़ पई। उहने संतरी नूं आवाज़ दे के पुछिआ ऐस वक्त इन्नी रात गई कौन गा रिहा साज भी कोई नहीं। उहने आके कहा राजन वह गुस्ताख कैदी कि जिन्ने कल तुहाडे हुक्म दी अदूली कीती कहन लगा उहनूं तुसीं मंजा बिस्तरा कोई छेक दित्ती कहिंदे नहीं उस कोठड़ी च लटाया जिथे तिखे पत्थर विछाए होए ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੱਖੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਗਲੀਚੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਏਡੇ ਫਾਨੂਸ ਜਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲਾਲੀ ਟਪਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਦੀ, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੀੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਗਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖਲੋਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਖਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਖੁਸ਼? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਏ। ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਨ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪੈਰ ਭਾਈ ਮਨਸੋ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕਮਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਮਨਸੁਖ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਝੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ, ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਲੀਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਗਲੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਰਤੰਗਣਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਹੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਮੈਂਡੜਾ ਬਾਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂਡਾ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਕਥਾ 'ਚ, ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖਿਲ ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੋ, ਉਹ ਆਏਗਾ। भाई मनसुख कह गए शिवनाम जपन लग पिया प्यारो ए जे सूके काष्ट खरिया गुरु प्रसाद नु वर्तना है। गुरु नानक दे नाम ते मैं गल ज्यादा साखी च लमकावा ना, कई पखंडी आ गए पता लगा भी गुरु नानक दा मुरीद हो गया राजा। पखंडी क्योंकि आन लग पे, राजे ने देखा कि सिख इन्नी उच्चे जीवन वाला ये नानक गुरु जी दे शब्द ते दम क्यों, उन्हें परखने शुरू कर दिते। अखीर ते जदो बेबल हो गया राजा, पखंडी बहुत आए, मेरा बाबा ना आया कि अज ओ महल तो बाहर निकलिया, रुख दे थले बाग विच जा बैठा ते जारो जार रो पिया। नौकरा ने पूछा राजन होया कि उत्थे साडे एक महान विद्वान ने एक पंजाबी दियां कोई सत्रा लिखिया ने काव्य रूप च। लोग पुछदे ने राजन होया कि क्यों रोने, वो कहिंदा मनसुख जो इत्थे आया सी वो मन दे सुख सिखा गया, तन दे सुख बड़े भोगे पर वो अंदर दी चिंगारी ला गया। मनसुख जो इत्थे आया सी वो मन दे सुख सिखा गया, रस झूम विच वस्त जी ओ मैनू भी चेतक ला गया, उजड़े वीरान दिल मेरे विच एक दी याद वसा गया, कोई धू कलेजे पा गया, कोई बिरहों दी शो लगा गया, वो कह गया कर याद तू बस त्रुट के ही आ जावेगा, बसो नी मेरा वालड़ा कद माही मेरा आवेगा। मैं ता अपने बाबे दी उड़ीक छा, सचमुच अज मेरा गुरु नानक पहुंच गया। सुके रुख हरे हो गए, उन्हें परखन वास्ते औरतां भेजियां, पर गुरु नानक ने शब्द किया गाछो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत उचार बेटियो कदे नहीं नचदियां जे। कह लगियां तुहानू रिजान लई, कह लगे जदो मैं बेटी कह दिता ते तुहाडी वासना तो मुक्त नहीं तुसी होईयां, बस बेटी शब्द ती शब्द सुनिया मेरे गुरु नानक दे इक शब्द ने उन्हां दे नस नस विच दौड़दी हुई वासना नू खत्म करके निर्मल प्रेम पैदा कर दिता। मैं बेनती करांगा एक सिख की संगत की, सत संगत चेंज लियांदी, दारू पीण वाला बंदगी करन लग पिया। एक दिन मालक उहदे घर च गया ते उहदे घर नू निवाज के सचेवे उहदे अंदर नू नाम नाल भरपूर कर दिता। मेरी बेनती है गुरमुखो सत संगत दे अर्थ आपां समझिए, असी इकट्ठा दे भीड़ा नू कह रहे हैं सत संगत, नहीं प्यारे सत संगत दे बैठे करे अर्थ। सत संगत दा अर्थ जिद्दन साडे अंदर नू सच दी चिनग मिल गई, सच दी संगत मिल गई। सत संगत फुरना भी हो सकता, सत संगत अखर भी हो सकते ने, सत संगत हजूम भी हो सकता। सतगुरु कहिंदे ने कि असी सत संगत विच गए ते परमात्मा दे नाम नू चितारिया। मैं फिर बेनती करांगा कि पहलियां तुकां दा पाठ, क्योंकि राहो दियां तुकां सन शब्द दा तत् पावे दो तुकां, पहलियां दो तुकां फिर सरवण करो जी।
साध संग हर हर नाम चितारा,
साध संग विच जाके सत संगत विच जाके सच्चे पातशाह कहिंदे ने खरी दे वाहगुरु दे नाम नू चितारा दा अर्थ चेते कीता। ते मैं अर्ज जरूर करांगा जितने आप सुन वाले मैं भी शामिल होके जदों भी सत संगत जाओ एक यतन करो भी एक घड़ी भी एक मिनट भी असी व्यर्थ नहीं जान देना। कीर्तन हो रहा है, कीर्तन सुनो, जे प्रेम दे शब्द पढ़े जा रहे हैं तो बेनती करो वो अवस्था मिल जाए, जे बेनतियां दे शब्द पढ़े जा रहे हैं तो अरदास करो सानू बेनती करन दी जाच आ जाए, अंदरे अंदर नाम चलता रहे। सतगुरु कह रहे हैं कि देखो भाई सत संगत विच पहुंच के खरी परमात्मा दे नाम नू चितारना कीता है।
सहज आनंद होवै दिन राती,
सहज आनंद होवै दिन राती, उस सत संगत विचो फल की मिलेगा, एक सहज ते दूजा आनंद। क्योंकि इन्हां दो शब्दां दी व्याख्या भी मैं करनी चाहना सहज ते आनंद किन्हें साध संगत विच खरी दे नाम नू चितारिया उहदे विचों एक बख्शिश मिली सहज ते दूजा आनंद ते उह उहदा टाइम नहीं मन्निया भी अद्धा मिनट दो मिनट दिन राती अठे पैर चौबी घंटे हर वक्त बारह महीने पूरी जिंदगी ये दो शब्द सहज आनंद होवे दिन राती दिन ते रात साडे अंदर सहज ते आनंद होवा है।
अंकुर पलो हमारा,
अंकुर पलो हमारा। मैं अर्ज की सी अंकुर दा अर्थ के जिस बीज विचों पेड़ा बन लग्या निक्की जी करूंबल बाहर निकल दी। मैं करूंबल शब्द वरत लिया, अंकुर कह लो। ये क्यों? जे बीज खुद माड़ा सी, जे बीज निकम्मा होवेगा उहदे विचों अंकुर नहीं निकलेगा। इस बेनती ने सुनिया, अंकुर भला हमारा दो अर्थ मैं कर सकां। जे बीज दा छिलका ठीक है पर अंदरों सड़ चुका है, उस सड़े को बीज वाले छिलका भावें साबित होवे अंकुर नहीं निकलेगा। जिहड़ा बीज अंदरों ते बाहरों साबित है उहदे विचों अंकुर निकलदा। प्यारियो, जिहदे चंगे कर्मां दा बीज है उहदे विचों अंकुर जरूर निकलेगा भला, ते जिहदे चंगे कर्म नहीं मंदे कर्मां दा बीज है उहदे विचों जिहड़ा अंकुर निकलेगा उह जहरदार ही निकलेगा। महाराज कहिंदे ने अंकुर भलो हमारा सहज आनंद खोवै दिन राती, दिन रात सहज ते आनंद। यह दो शब्द जिहड़े ने ना ये साडी सिक्खी दा शिखर ने जी, एक सहज ते दूजा आनंद। जिहड़ा सहज शब्द है इहदे अर्थ की ने? उंज जे किते असी शब्द बोलीए असी सहज दा अर्थ करने आहिस्ता आहिस्ता, सहजे सहजे बोल, सहजे सहजे चल, सहजे सहजे रोटी खां, ए असी इस लई करने आहिस्ता आहिस्ता धीमी गति ले। असल च जिहड़ा सहज शब्द है ये संस्कृत भाषा दा शब्द है। इहदे अर्थ जरूर अखरी अर्थ सुनियो, ये संस्कृत भाषा दा शब्द है। ते इस शब्द दे अर्थ विद्वाना ने किते ने के नाल पैदा होया। फिर बेनती सुनियो, इहदे सिर्फ अखरी अर्थ ने सहज दा अर्थ नाल उत्पन्न होया, नाल पैदा होया। जदों असी पंजाबी साहित्य कोश नूं पढ़ने तो उहदे विच सहज दे अर्थ किते ने यह शब्द है, यह शब्द वरते ने। सह का अर्थ किया नाल, पंजाबी विश्व पंजाबी साहित्य कोश सह का अर्थ नाल। सह जो ससा हाँ जजा ना, ससा ते हाँ वाह करके ये सह दे अर्थ किते ने नाल, ते जजा अखर पिछा रख के अर्थ किते ने पैदाइश, के सहज दे अर्थ किते ने जिहड़ा नाल पैदा होया है। कोशगत अर्थ ओ ने, पर गुरमत गुरबाणी दे विच इहदे अर्थ बड़े उच्चे ने। सहज दा अर्थ एक ओ परम अवस्था है। तीन शब्द ने, एक खुशी, दूजा सुख, ते तीजा आनंद। इन्हां तिन्नां शब्दां विच भी बड़ा अंतर है। जिहड़ा सुख शब्द है, चेते रखियो, सुख कईयां कोल हुंदा पर उहनां कोल खुशी नहीं हुंदी। कईयां कोल खुशी हुंदी है पर उहनां कोल आनंद ते सहज नहीं हुंदा। इह शब्द फिर मैं दोहराण लगा, सुख है पर खुशी नहीं। असीं किसे नूं पुछने आ भी तेरा तां बड़ा कारोबार है, उह कहिंदा मेरे घर विच किसे चीज़ की कमी नहीं, मेरे कोल गड्डियां कोठियां कारां हर सुख मैनूं रब ने दित्ता है, पर नाल कहिंदा है घर विच खुशी कोई नहीं। इहदा मतलब सुख है, सुख दा समान है पर खुशी नहीं, परिवार दे जीआं च खुशी नहीं। रोटी 36 प्रकार दा भोजन है पर खाण लग्गिआं एक दूजे नाल जुत्तो जुत्ती हुंदे, गड्डियां सारिआं कोल ने एक दूजे नूं वेखणा पसंद नहीं करदे। सहूलत होना होर चीज़ है, खुशी होना होर चीज़ है। इस तों अगे मैं बेनती करां, कईआं कोल खुशी है पर खुशी थोड़ चिरी है। सहज गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच सहज ओह परम अवस्था है। प्यारियो, ये दोनों शब्द बाणी च ज्यादा कट्ठे मिलणगे, एक सहज ते दूजा आनंद। सहज ओह अवस्था है कि जिथे सुख विच सुख आए ते अंदर हंकारी होवे ना, अंदर डोले ना, ते जिथे दुख आवे उत्थे घबरा के चिंता विच ना जाए। सहज वह अवस्था है जिथे दुख ते सुख एक बराबर ने, सहज वह अवस्था है जिथे खरक ते सोग एक बराबर ने, सहज वह अवस्था है जिथे मित्र ते दुश्मन एक बराबर ने, सहज वह अवस्था है जिथे उस्त ते निंदिया एक बराबर ने, सहज वह अवस्था है जिथे पुत्र का जन्म ते पुत्र का भोग एक बराबर ने। सहज एक अवस्था का नाम है। यही कारण कि असी पढ़ी गए तो ताई बाबा जी ने कहा सहज नाम तो बिना तो सतसंगत तो बिना पैदा ही नहीं हो सकता। जेड़े कले बुद्ध ज्ञान नाल पढ़ी गए उन्होंने बाणी ने कहा क्या पढ़ी है, क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलियो सोई। नॉलेज सी पर सहज नहीं सी। अगे फिर उन्होंने हदायत की शब्द एक वरत्या मूर्खा नॉलेज कट्ठी क्या करी गए, नाम क्यों नहीं जपया, क्या पढ़िया, क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलियो सोई, हर का नाम ना जबस गावारा, क्या सोचें बारंग बारा। सोचा च पै गया बंदगी की तेरी सहज किवें। गुरु साहब ने सहज की अवस्था बारे एक बचन श्लोक कहा है कि गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश दसम द्वार च। गुरमुख अंतर सहज कह मन चढ़िया दसवें आकाश तिथा ऊंग ना भुख है, ना उथे नींद ते ना उथे भुख है, हर वेले अनंत तिथा ऊंग ना भुख है। और अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। सतगुरु कहिंदे एक ता सहज ते दूजा आनंद। प्यारो आनंद ते सहज इकट्ठे ने। यही कारण तुसी लावां जदों पढ़दे हो उहदे विच सतगुरु ने पहली लाव च दोनों कट्ठे रखे। हर पहली लाव प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप ते जाया बलराम जीओ, धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरपुरा आराधो सब किलविक पाप गवाया, सहज आनंद होवा वडभागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कह नानक लाव पहली आरंभ काज रचाया। चौथी लाव इहदे नाल मिलदी, हर चौथी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जीओ। तुसी बारह माह पढ़ो, बारह माह का प्रकरण ही सहज ते आनंद। चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद घना, आनंद साहब का पाठ कर दो। गुरु साहब कहिंदे ने आनंद थोड़ चिरी खुशी का नाम नहीं, सहज ते आनंद कट्ठे ने। जिथे सहज होवेगा उत्थे आनंद होवेगा, जिथे आनंद होवेगा उत्थे सहज होवेगा। यह जुड़वें शब्द नहीं कले, ये अवस्था नाल संबंधित ने। सतगुरु कहते सहज आनंद होवे दिन राती, अंकुर भलो हमारा, साडे जिंदगी दा अंकुर भला जिथे बंदगी कर करके सहज ते आनंद मिलिया है।
रहाओ गुरपुरा भेटियो बड़ भागी,
पूरे गुरु दा मिलाप पूरा भेटियो बड़ ते मिलना, वड्डे भाग सन तां गुरु मिलिया, वड्डे भागां तो बिना गुरु नहीं मिलता। मैं कई बार कहना पहली अरदास करो सानू इस धरती ते जन्म मिल गया शुक्र करो, दूजा शुक्र करो सिखां दे घराने च जन्म मिल गया, ते तीजा शुक्र करो गुरु नानक साहिब वर्गा मुरशद मिल गया। एड्डी वड्डी कृपा, नदर होवे तां गुरु मिलदा। संत सभा ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए। सतगुरु कहिंदे ने वड्डियां भागां वालियां नूं सतगुरु दा मिलाप हुंदा है।
जाको अंत ना पारा वारा,
मेरे गुरु दा आर पार कोई नहीं पा सकदा, अंत नहीं पा सकदा, और आर पार दी किसे नूं समझ नहीं।
कर गए काड लियो जन अपना,
कर गए काड लियो जन अपना। असी अग दे समुंदर च डुबे पए सां, सतगुरु ने कृपा की साडा हाथ पकड़ लिया, कर गए अगन सागर बूढ़द संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा, बाह पकड़ ठाकुरों की दी। मेरे गुरु ने डुबद्या नूं कहा सिखा मैनूं बाह पकड़ा, बाह पकड़ाई ते महाराज कहिंदे सानू इस भव सागर तो बचा लिया है।
देख सागर संसारा
भरिया हुआ समुंदर, ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਖੱਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।
ਬਾਹੁੜਨਾ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ,
ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਾਹੀ ਸਵਾਮੀ ਕੀ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ,
ਸੰਕਟ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣੀਏ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੀਏ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੂੜ ਦੇ ਗੱਡੇ ਢੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਤਮਕ ਖੇੜਾ, ਆਤਮਕ ਹਲਾਸ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਬਾਹੁੜਨਾ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਗਾਹੀ ਸਵਾਮੀ ਕੀ, ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।